अध्याय पांच थाइफिंग आंदोलन द थाइफिंग मूवमेंट। यह अध्याय अश्विनी शंकर के द्वारा लिखा गया है, जो देश बंधु कॉलेज कालका जी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है। पृष्ठ संख्या 57। चीन के इतिहास में कृषक आंदोलन हमेशा से एक प्रमुख तत्व रहे हैं, लेकिन 1850 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक चलने वाला थाइफिंग आंदोलन इन सभी कृषक आंदोलनों में अधिकतम शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। जेयान सेजनो की दृष्टि में यह इतिहास में शायद कृषक युद्धों की महानतम लहर था। प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट वेव ऑफ पीजेंट वार्स। वास्तव में यह एक सामाजिक संघर्ष था, जिसमें गरीब कृषक वर्ग ने समानता की प्राप्ति विदेशी राजसत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान एवं पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा अफीम युद्धों के रूप में दी गई चुनौती का आधुनिक तरीके से सामना करने का प्रयत्न किया। हुंग सिओच्युआन थाइफिंग आंदोलन की नींव हुंग सिओच्युआन द्वारा स्थापित की गई। उनका जन्म कुआंगतुंग प्रांत के एक कृषक परिवार में हुआ था। कुछ समय तक अध्यापक के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने संघीय सेवा परीक्षा की तैयारी बड़े परिश्रम और लगन के साथ की, लेकिन 15 वर्षों में चार चार बार बैठने के बाद भी वह उसमें सफल नहीं हो पाए। इस विफलता ने हुंग को सत्ता विरोधी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एवं दुस्साहसी बना दिया। वह अक्सर भारी निराशा एवं मति भ्रमों का शिकार होने लगा। इस समय उनका ईसाई धर्म प्रचारकों से संपर्क स्थापित हुआ। इसके बाद से वह स्वयं को ईसा मसीह का छोटा भाई समझने लगा। वह अपने दिव्य दृष्टियों में भगवान से धार्मिक संदेश भी प्राप्त करने का दावा करने लगे। उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी स्वयं उठाई, ताकि वह मानवता की सुरक्षा कर सके। इस भूमिका के अंतर्गत उन्होंने चीन के आंतरिक विश्वासों, विशेषकर कन्फ्यूशियसवाद पर कड़ा प्रहार किया, क्योंकि उनके अनुसार यह सामंतों का धर्म, रिलीजन ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स था। इसकी शिक्षाएं किसी काम की नहीं थी। 1844 ईस्वी में अपने उग्र धार्मिक प्रचार के कारण उन्हें अध्यापक के पद से हटा दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने मित्र फंग इनसान के साथ मिलकर कुआंगशी प्रांत में ईश्वर आराधक समाज, सोसाइटी ऑफ गॉड वर्शिपर्स का निर्माण किया। इस समाज में कई हजार अनुयायी, जो मुख्यतः गरीब कृषक तथा हक्का समुदाय के खनन श्रमिक थे, शामिल हुए। वैसे तो यह बताना कठिन है कि कब ईश्वर आराधक समाज ने एक सैन्य संगठन का रूप धारण किया, लेकिन फिर भी जुलाई 1850 ईस्वी के मध्य तक इस संगठन के सदस्य इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि सरकार के लिए खतरा साबित हो रहे थे। हुंग सिओच युवन ने 11 जनवरी 1851 ईस्वी को थाइफिंग थियनकुओ अर्थात विशाल शांतिमय दिव्य राज हिवेनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस की स्थापना की घोषणा की, तथा स्वयं को थियनवांग अर्थात दिव्य शासक की उपाधि देते हुए पेचिंग के छिंग शासकों के साथ सीधे संघर्ष करने का निर्णय लिया। यहीं से थाइफिंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसके पश्चात थाइफिंग आंदोलनकारियों ने उत्तर की ओर प्रस्थान शुरू किया, और रास्ते में सरकारी सेनाओं से उनकी कई बार मुठभेड़ हुई। भारी हानि के बावजूद इयूनकान नगर थाइफिंगों के नियंत्रण में आ गया। यहाँ से अपनी शक्ति और संख्या में वृद्धि करके लगभग 37,000 सैनिकों के साथ हुंग ने जनता से छिंग शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। सरकारी फौज थाइफिंगों को रोक पाने में लगातार असफल रही, और थाइफिंग हुनान प्रांत की सीमा तक पहुंच गए। लगातार आंदोलनकारी विजय से थाइफिंगों की आर्थिक और सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही। मार्च 1853 ईस्वी में उन्होंने चीन साम्राज्य की प्राचीन राजधानी नानचिंग पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर दिव्य राजधानी अर्थात थियनचिन रख दिया। उसके बाद अपने सैन्य प्रयत्नों के द्वारा यांगत्ज नदी के पास वुछांग से लेकर चनचियांग तक के मुख्य शहरों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में जुट गए। अंत में मजबूर होकर छिंग सरकार ने तजंग कुआफान की नियुक्ति कर उसे एक नई आधुनिक सेना स्थापित करने का कार्यभार सौंपा। तजंग ने 9 हुनान सेना की स्थापना की जिसकी संख्या 1860 ईस्वी में 12,000 तक जा पहुंची। तजंग को शाही कमिश्नर इंपीरियल कमिश्नर की पदवी दे दी गई। पश्चिमी राष्ट्रों ने शुरू में तटस्थता की नीति अपनाई लेकिन 1860 ईस्वी में शंघाई पर आक्रमण के बाद अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए वह छिंग शासक को पश्चिमी तकनीक और अधिकारियों की रसद देने लगे। थाइफिंग आंदोलनकारी आपसी मतभेदों और संगठनात्मक कमजोरियों के कारण 1861 ईस्वी में पहली बार पराजित हुए। अंत में 19 जुलाई 1864 ईस्वी को तजंग ने भीषण युद्ध के बाद नानचिंग पर पुनः छिंग राजसत्ता के शासन को कायम किया। आंदोलन के कारण कॉजेज ऑफ द मूवमेंट। चीन एक कृषि प्रधान देश था। जनसंख्या का मुख्य हिस्सा कृषक थे जिन्हें सबसे अधिक शोषित किया जाता था। चीन में भूमि हमेशा भूस्वामियों के नियंत्रण में होती थी और अर्थव्यवस्था का संपूर्ण ढांचा कृषकों के कंधे पर टिकाया गया था। कृषकों से भूस्वामी कर तथा किराया और व्यापारी एवं सूदखोर भारी ब्याज वसूल करते थे। राज्य को भी उन्हें श्रम नकद अथवा वस्तुओं के रूप में कर देने पड़ते थे। थाइफिंग आंदोलन जिस भौगोलिक क्षेत्र में आरंभ हुआ वहां पर गहन खेती और जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा था। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में चीन की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। 1741 ईस्वी में 14.3 करोड़ से बढ़कर 1850 ईस्वी में जनसंख्या 43 करोड़ हो गई। इसकी तुलना में कृषि प्रधान भूमि में केवल 33% की बढ़ोतरी हुई। जनसंख्या और भूमि के अनुपात में असंतुलन होने के कारण प्रति व्यक्ति पैदावार में गिरावट आई। जनसंख्या में वृद्धि का लाभ भूस्वामियों को मिल रहा था क्योंकि इससे कृषकों में भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने के कारण वह अपनी लगान की दर भी बढ़ा देते थे। लेकिन यह तभी संभव था जब तक सरकार इतनी शक्तिशाली हो कि भूस्वामियों को निजी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा कर सके और समय पर कृषकों से कर लगान तथा किराया वसूल करवा सके। 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण में जनसंख्या हद से अधिक बढ़ जाने से सरकार के लिए बढ़ते हुए असंतोष को रोक पाना कठिन कार्य सिद्ध हो रहा था। भूमिहीन कृषक की स्थिति शोचनीय थी। उसे उत्पादन का 50% हिस्सा बटाई यानी शेयर क्रॉपिंग या भू किराए लैंड रेंटल के रूप में देना पड़ता था। 1820 ईस्वी के बाद तांबे के सिक्कों का मूल्य घटा दिया गया और अफीम में तस्करी तथा अवैध व्यापार के कारण यूननान से तांबे के सिक्कों की पूर्ति बंद हो गई। सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति न सुधारे जाने के कारण दो समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली, तांबे की तुलना में रजत के सिक्कों का मूल्य दुगुना बढ़ गया। दूसरी, कृषिकर रजत भाव पर तय किया जाता था और उसका भुगतान तांबे के सिक्कों में करना पड़ता था। इस असंतुलन से कृषकों पर आर्थिक भार और भी अधिक हो गया और जीवन निर्वाह करने के लिए उन्हें अक्सर कर्जदार बनने पर मजबूर होना पड़ता था। प्रति व्यक्ति भूमि में घटाव और कृषकों की व्यक्तिगत भूमि में लगातार होती कमी के कारण कृषकों की दशा बिगड़ती चली गई। जीवन निर्वाह न कर पाने की स्थिति में कृषक भूमि को बेचकर भूस्वामी के किराएदार बनने लगे। भूमि को वापसी खरीदने की क्षमता उनके पास कभी न आने के कारण धीरे धीरे अमीर वर्गों के पास चीन की 50% से लेकर 60% तक कृषि प्रधान भूमि थी। 10% भूमि सैनिक तथा अन्य अधिकारियों के पास थी और केवल 30% भूमि चीन की शेष 40 करोड़ जनता के पास थी। कृषक भूमिहीन होकर श्रमिक बनते चले गए और दूसरी ओर भूमि पर अमीरों का एकाधिकार होता चला गया। यह भूस्वामी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास न करके शहरों में रहते थे। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि, श्रमिक कृषक और शोषण करने वाले भूस्वामी का विकास हुआ। दोनों के बीच सामाजिक संबंध लगान तथा बँटाई द्वारा जो हो रहे घोर शोषण पर आधारित था। इस प्रकार जैसा कि डीएस जयगोरिया का कहना है कि इस स्थिति ने कृषक असंतोष और आर्थिक विपदाओं में संपूर्ण पारस्परिक संबंध कायम कर दिया। सच ए सिचुएशन प्रोवाइडेड ए परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज एंड पीजेंट अनरेस्ट।